अब आपको खुश आमदेद जी। ताहिर साहब आपको खुश आमदेद।
जी बहुत मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका।
तो हम यहाँ वाशिंगटन में ये वीडियो देख रहे हैं और नज़र आ रहा है कि ये खौफनाक हादसा था, वाकया था। कुछ हमें बताइए कि कितने फौजी अहलकार इन ट्रेनों में सवार थे, कितने हलाक हो गए हैं और कितनों की जानें बचाई गई हैं।
देखिए, एक स्पेशल ट्रेन थी जो पन्नू आकर होने से खारिया कंट जा रही थी। इसमें कुल 27 डिब्बे थे, जिनमें से 6 जो थे वो पैसेंजर बोगिया थी और 21 जो थे उसमें माल था, वो माल गाड़ी की बोगिया थी। और ये ट्रेन जो है जब यहाँ पहुंची है अपर चनाब पे, जो जहाँ पे चट्टा और लिपर चट्टा दो कस्बे हैं, इनके दरमियान एक बड़ी नहर है अपर चनाब, उसके पुल पर जब पहुंची है तो ये हादसे का शिकार हो गई। यहाँ तक इस पुल के बारे में मुख्य क्या सवारियों का ताल्लुक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसका अभी रिपोर्ट में आ चुका है, हम साल में 4 बार इन पुलों का खसूसी मुआयना करवाते हैं। और अभी अपना जनवरी में जब पंजाब में नहरें बंद हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, तो उन दिनों भी इन तमाम पुलों का जो नहरों पे वाकई हैं खसूसी मुआयना करवाया जाता है। इस पुल का भी मुकम्मल थारो इंस्पेक्शन की गई, ये रेलवे ट्रैफिक के लिए बिल्कुल मुकम्मल थी, फिट थी, फाइन थी, मजबूत थी, मुस्ताकम थी। और थोड़ी देर पहले इस हादसे से 1-1.5 घंटा पहले पाकिस्तान एक्सप्रेस जो पिंडी से कराची जाती है, पूरी रफ्तार के साथ यहाँ से गुजरी और बखैरियत गुजर गई।
अच्छा।
अभी तक कुछ हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है कि इस हादसे का सबब क्या था।
अच्छा।
लेकिन तकरीब तारीख के इम्कान समेत तमाम इम्कान को मद्देनजर रखे तहकीकत की जा रही है।
अच्छा।
और जो भी नतीजे निकलेगा एक शफाफ और दयानदाराना तहकीकत के नतीजे में, उसे कौम के सामने और दुनिया के सामने पेश कर दिया जाएगा।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हमारे साथ इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज से मुंसलिक ब्रिगेडियर सैद नज़ीर हैं, जिन्होंने स्काइप के ज़रिए इस प्रोग्राम में शमूलियत ली है। ब्रिगेडियर सैद, आपको खुश आमदेद।
बहुत शुक्रिया।
तो जैसे कि कहा जा रहा था, और हमारे साथ जो पाकिस्तान रेलवेज़ के पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा एक और भी ट्रेन वहाँ से गुजर कर गई और उस वक्त कोई वाक़या नहीं हुआ। इससे आपका क्या शुबा क्या बताता है कि क्या ये तखरीबकारी के ज़िम्मे में लाया जाएगा ये वाक़या?
नहीं, जहाँ तक इस ट्रैक का ताल्लुक है तो ये तो आम मेन ट्रैक है और ये पुल भी बड़ा पुराना है और यहाँ पर जाहिर है कि इसमें इस वक्त तो पानी होता है, लेकिन ये जो ट्रेन गुजरी है इससे पहले, तो इसका मतलब है कि प्री प्लांट वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मैकेनिकल, जिसको कहा जा सकता है कि अगर उसके जो अबटमेंट थे, जो उसके सपोर्ट्स थे, उनको किसी तरीके से लूज किया गया था, क्योंकि कोई धमाके की आवाज़ आई नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है कि मुकम्मल तौर पर तखरीबकारी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ट्रेन जब उस पर आई है तो आप वीडियो जिस तरह देख सकते हैं, तो बिल्कुल दरमियान में आकर वो बिल्कुल कोलेप्स कर गए और उसके डब्बे अंदर गिर पड़े, जिससे ज़्यादा इन्हें मतलब है कि नुकसान हुआ है, इन्हें ट्रेन कुछ गुजरा नहीं था। दूसरी बात ये है इसमें कि अगर कोई टाइम डिवाइस था तो वो पानी के अंदर होगा और उसके पिलर्स जो है उसके नीचे लगा होगा, जिसकी वजह से इन मौके पर किसी तरीके से अगर उसको तखरीबकारी कहा जा सके तो फिर उसको डिटोनेट किया गया होगा या उसको कोलेप्स कर दिया गया होगा। तीसरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक मूवमेंट नहीं थी, और कोई बड़े मकसद के लिए उसके लिए नहीं जा रहे थे, आम ट्रुप्स की मूवमेंट थी, जो कि बनू आकिब से एक बटालियन आ रहा था और नॉर्मली स्पेशल ट्रेन उनके लिए होते हैं जिसमें ये फौजी आ रहे थे, और उसमें अनफॉर्चुनेटली को एक कर्नल साहब भी थे उस यूनिट के, और इसके अलावा 12 जवान थे वो भी, और इसके अलावा कुछ जख्मी हो चुके हैं, कुछ लाशें निकाली भी जा चुकी है और कुछ निकाली जा रही है, लेकिन इस किस्म के हादसे हो जाते हैं।
अच्छा।
अलबत्ता जो हालात हैं उसके तहत हम तखरीबकारी को मुकम्मल तौर पर खारिज इम्कान नहीं बता सकते, और दूसरी बात यह है कि ये बहुत जल्दी ये चीज़ सामने आ जाएगी कि आया तखरीबकारी थी या नहीं थी, क्योंकि अगर इस किस्म की तखरीबकारी होती है तो उस पर पर्दा नॉर्मली नहीं डाला
अच्छा,
जाता,
अच्छा
क्योंकि
अच्छा
हालात आज तक इस तरह है कि उसको लोगों के सामने ओपन रखा जाता है। और जहाँ तक तो आईएसपीआर का ताल्लुक है, तो उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दी है वो भी इसी नोयत की है।
अच्छा,
जी
लेकिन क्योंकि हम रेलवे के ज़राए से भी बात कर रहे हैं, लिहाजा इस एंगल को भी हम देख रहे हैं। और ताहिर साहब, ये भी आप जानते हैं कि पुल जो हैं वो खासे पुराने हो चुके हैं, हालांकि आपने कहा कि हाल ही में इस पुल की मरम्मत की गई थी, लेकिन हम भी जानते हैं कि रेलवे के पुल बहुत पुराने हैं। तो ये किस हद तक आपके ख्याल में एक नुक्ता हो सकता है कि ये एक हादसा था?
नहीं, हादसे का इनकार भी रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि रेल कुछ ही देर पहले यहाँ से एक ट्रेन गुजरी को 1.5 घंटा पहले, और रोजाना यहाँ से ट्रेन गुजरती थी, और हम इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश पुल जो है वो पुराने हो चुके हैं, 80 साल, 90 साल, 100 साल उम्र को पहुंच चुके हैं। और ये जो अपना पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें $3.8 बिलियन का जो मनसूबा है, वो ML1 जो है अपना मेन लाइन वन जो कराची से पिशावर तक है, उसका अपग्रेडेशन का और उसे मॉडर्नाइज करने का मनसूबा है, जिसमें पुलों की मरम्मत किया है, जिसमें सिग्नलिंग के सिस्टम को भी बेहतर बनाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने पुल होने का ये मतलब हो कि हम उसकी तरफ से लापरवाह हैं, वो खस्ता हो गया, तो हमें उसकी परवाह नहीं। हम मुसलसल उनका जायजा लेते रहते हैं और वो इस काबिल होते हैं, इसका ये पुल भी इस काबिल था कि यहाँ से ट्रेन गुजरे और रोज गुजरा करती थी। लेकिन मैं अभी यकीन के साथ कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। जाहिर बात है कि अस्करी इदारा भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, रेलवे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दोनों मिलकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हकायक होंगे, ये गलती है, ये पुल में कोई नक्शा, ये वो जो पटड़ी होती है उसके नट बोल्ट उखाड़ दिए गए, क्या हुआ, ये जितने भी इम्कान है, नहली के इम्कान है, तखरीबकारी के इम्कान है, एक कुदरती हादसे के इम्कान है, जितने भी मुमकिन वजूह हो सकती हैं, वजूहत हो सकती हैं, उन तमाम को मद्देनजर रख के तहकीकात की जाएगी।
अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, और ताहिर साहब आप 2-3 मिनट और रहें हमारे साथ, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें कॉल किया है और यकीनन उनके जहनों में भी कुछ सवालात हैं इस ट्रेन वाक़े के बारे में। हम चलते हैं कोहाट, जहाँ से मलिक नायब खान कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, मलिक नायब खान। वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
जी कहिए।
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये पुल भी दुरुस्त था और चेकिंग भी हुई थी उसकी, और फिर क्या नाम है, ये हादसा जो है हुआ, ये तो फिर तगरीबकारी का है। अगर तगरीबकारी भी नहीं है तो फिर ट्रेन का हो सकता है कि ट्रेन में कोई खलल हो और ट्रेन की वजह से ये ट्रेन नीचे गिर गया हो नहर में। मेरा ये सवाल है, बड़ी
अच्छा,
मेहरबानी, शुक्रिया।
शुक्रिया। और हमें कॉल किया है खान अकबर अफरीदी ने कोहाट से। जी जनाब।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
हमारी बदकिस्मती ये है कि अवाम के सामने न सदर सच बोल सकता है, इतनी जुर्रत उसमें नहीं है जब हादसे होते हैं, न वजीर आजम सच बोल सकता है, न रेलवे वजीर, कोई भी तो रेलवे का जो नुमाइंदा आपने बुलाया जनरल मैनेजर, वो क्या सच बोलेगा। हकीकत ये है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, 2-3 दिन पहले हो गई है, 96% जो पुल है वो एक्सपायर्ड है और वो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। ये सब करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, ये अपने ऑफिस से नहीं निकलते हैं।
अच्छा
जो
अच्छा
मर्जी
अच्छा शुक्रिया, आपका नुक्ता नजर हमने सुन
थैंक
लिया।
यू वेरी मच।
और हम इसी इसी मौजू पर हमारे साथ हैं पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमा मंजूर रजी, और उनसे यही सवाल पूछते हैं। मंजूर रजी, आपको भी खुश आमदेद।
थैंक यू।
तो आपने सुना कि हर तरफ से जो है वो बहस की जा रही है कि आया ये जो वाकया हुआ ट्रेन का, ये तखरीबकारी का था या कोई हादसा था। आपकी अपनी राय क्या है, क्योंकि आप भी तो जाते हैं और पुलों को देखते हैं, आपके ख्याल में ये खस्ता हाल पुल थे जिसकी वजह से ये वाकया हुआ?
जी, देखें, हमारे जो पूरे मुल्क में कराची टू पेशावर और ब्रांच लाइनों पर जो बरतानिया ने रेलवे लाइन बिछाई थी, उसमें ब्रिजेस बनाए थे, बड़े भी छोटे भी, नालों पर, नदियों पर, और बड़े, ये कोई 4,500 के करीब सारे ब्रिजेस हैं पूरे मुल्क में फैले हुए। इसमें 1-2 साल पहले ये भी कहा गया कि 1100-1200 पुल और छोटी नदियों पर और बड़े ब्रिजेज जो हैं ये डैमेज हैं। तो ये अखबार में भी खबरें आई और इसके बारे में ये कहा गया कि इनकी मरम्मत की जाएगी और रेलवे देखभाल भी कर रही है। हमारी एक ब्रिज फैक्ट्री होती है झेलम के अंदर, उसके मुलाजमीन भी आते हैं और काम करते हैं, लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये दिन में 12 बजे हुआ है, और ये वाकया आप समझ लें कि ये खारियां, ये अपना फैसलाबाद से खारियां की जानिब ट्रेन जा रही थी, ये आर्मी स्पेशल थी, इससे कबल हमारी ये पाकिस्तान एक्सप्रेस चलती है रावलपिंडी से कराची और कराची से रावलपिंडी, ये एक घंटा पहले गुजरी है। तो ये ऐसा लगता है कि कुछ तखरीबकारी भी है और कुछ हमारी भी कोताही है कि हमने अपने ब्रिजेस को और अपने किलों को देखा ही नहीं है कि जनाब इसकी मरम्मत की जाए या ना की जाए। जी
जी और हम इसी, क्योंकि ये अभी वाक़या हुआ है तो ये बिल्कुल इब्तदाई मराहिल हैं, लिहाजा हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। हमारे साथ ब्रिगेडियर सैद नज़ीर हैं जो इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज़ से मुंसलिक हैं, उनके साथ हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर रऊफ ताहिर, और हमें जॉइन किया है पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स फेडरेशन के मंजूर रज़ी ने। इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं गुजरांवाला में ट्रेन उलटने से फौजी अहलकारों की हलाकत के बारे में। हम एक और कॉलर को ले लेते हैं और उसके बाद हम सवाल करते हैं रऊफ ताहिर से, और उसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट अनकरीब शुरू हो जाएगा। लेकिन कॉलर का नाम है मोहम्मद इकबाल और उन्होंने कॉल किया है डिंगा से। जी जनाब कहिए।
अस्सलामुअलैकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
ये बात यह है कि मतलब जितना पैसा इन्होंने मेट्रो बसों पर लगा दिया है, ये एक साहब कह रहा था कि हम चार दफा चेक करते हैं साल में, ये एक दफा भी नहीं करते। हम रेलवे के ऊपर रहते हैं इंशाल्लाह, हमें सब पता है, कभी भी किसी पुल को किसी ने चेक नहीं किया। हम खुद रेलवे को जानते हैं, रेलवे के साथ रहते हैं। बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। ये सब पैसा इन्होंने मेट्रो बस पर लगाकर आवाम की और बड़े महकमों की शक्ति बनाई हुई है, ये इनकी नजाकी।
शुक्रिया शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और ताहिर साहब, जाने से पहले अगर आप इसी हवाले से कुछ कहना चाहें, फ़र्ज़ कीजिए कि पता चलता है कि पुल पुराने थे, कि इंस्पेक्शन सही नहीं हुई थी जिसकी वजह से इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गईं, तो आपके ख्याल में सरकार की तरफ से इस पर क्या अमल होगा? जी रऊफ ताहिर।
ये तो 15-20-30 साल पुरानी दुनिया नहीं है, अब सच्चाई की दुनिया है। कोई चीज छुप नहीं रह सकती है, और चीजों को कारपेट के नीचे आप नहीं छुपा सकते इतने बड़े हादसे को। अगर ये तकलीफ आ रही है ये भी सामने आ जाएगी, अगर ये पुल की कमजोरी है, हमारी नहली है, जो कुछ भी है ये सामने आ जाएगा, और जो भी इसका जिम्मेदार करार पाएगा इंशाल्लाह सजा से नहीं बच सकेगा। बाकी रही मेट्रो पे पैसे खर्च किए जा रहे थे, मेट्रो पे सूबाई हुकूमतें पैसे खर्च कर रही हैं, रेलवे एक विफाकी इदारा है जिसका अलग से एक बजट है। अब आप बताएं कि मेट्रो के बजट से और रेलवे के बजट से उसका क्या ताल्लुक बनता है? और इसमें कोई शक नहीं, एतराज है कि हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका मैंने किया कि पार्क चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में $3.8 बिलियन जो है वो ML1 की मेन लाइन वन जो कराची से पिशावर तक हमारी मारूफ सड़क मारूफ लाइन है, उसकी मरम्मत के लिए, उसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके उसे नया बनाने के लिए, उसके सिग्नलिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए, कंप्यूटराइज करने के इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेलवे के पुराने पुल जो है वो इस काबिल नहीं रहे पुल पे रेलवे सफर करे, और हम मंदों की तरह उसके सैकड़ों हजारों लोगों को गुजार रहे हैं और उनकी जिंदगी इसमें डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा जी, एक मिनट हमारे साथ रहें। मंजूर रजी, आप बताइए कि अगर तहकीक होती है तो आपके ख्याल में वो शफाफ होगी? यानी कि अगर पता चलता है कि वाकई ये पुराने रेलवे के पुल थे जिसकी वजह से लोगों की जानें खतरे में पड़ गई हैं, तो आपके ख्याल में ये मामला जो है आवाम के सामने लाया जाएगा?
देखें जनाब, कई तहकीकें हुई, कई हादसात हुए, कई लोग मारे गए, कई ब्रिज गिरे, रन पठानी का ब्रिज गिरा तीन दफा शेख रशीद से, ये तहकीकात होती रहती हैं लेकिन सर्द खाने में चल जाती हैं। कई हादसात में सांगी में हुआ, दूसरी जगह हुआ, तहकीकातें हुई लेकिन उसका अवाम के सामने नहीं आया। अब ये हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी कह रहे हैं और ये हुकूमत के लोग भी, लेकिन चूंकि अब मीडिया काफी आजाद है, ये तहकीक होनी चाहिए और उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके मंजर आम पे लाया जाए और आवाम को बताया जाए कि यह हादसा क्यों हुआ और हमारे जो ब्रिजेज हैं इनकी मरम्मत की जाए। और ये हमारी ब्रिज शक्ति और हमारे रेलवे अफसरान और रेलवे वजीर ने भी कहा है कि जनाब हम इनकी मरम्मत करने के लिए काम कर रहे हैं, रेल को बेहतर बनाया जाए, ये हादसा अचानक हुआ है, वरना तो अगर ये आर्मी स्पेशल का तो समझ में नहीं आता कि वो गाड़ी फैसलाबाद से खारिया की तरफ जा रही थी, किसी को क्या टाइम टेबल का पता था, ये तो अंदर से भी कोई कहानी हो सकती है। लेकिन ये ऐसा है कि मुझे तो ये लगता है कि कोई ना कोई इसमें तकरीबकारी जरूर है, वरना रेलवे के ब्रिज इससे पहले भी ट्रेन गई है, गुजर जाती, इतने कमजोर भी नहीं है कि ट्रेन गुजरे तो जनाब ब्रिज गिर जाए। इसलिए कि हमारे जो गैंगमैन है वो वॉक करते रहते हैं और ब्रिजेस को देखते रहते हैं और पहले से निशानदेही कर देते हैं कि जनाब ये ब्रिज कमजोर है या ये लाइन कमजोर है, तो इसलिए वो ये हादसात से बच जाते हैं। लेकिन अगर इंक्वायरी हो तो शफाफ हो और इसके बारे में रिपोर्ट मंजर आम पे लाई जाए, अवाम को, पाकिस्तानी लोगों को, तमाम दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान रेलवे शफाफ तहरीक करता है।
ताहिर साहब, एक और सवाल है आपसे इससे कबल कि हम आपको खुदाफिस करें। जैसे कि आपके भी इल्म में हैं कि 12 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं इस सानहे में, ये बताइए कि कुछ ऐसी भी जाने हैं जो बचाई गई हैं, यानी कि बाद में जिसे कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ उससे कुछ लोगों को निकाला गया इन ट्रेनों से? जी रऊफ ताहिर, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। जी रजी साहब, अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें, आप भी इस इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं बहुत करीब से, क्या पता चला है कि कुछ लोगों की जानें बचाई गई हैं जो पानी में थे?
तो
जी 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 बताइए।
मुझसे पूछा
जी जी, मतलब जी 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 आपसे पूछा जी
जी बात यह है कि 12 लोग तो जो है वो शहीद हो गए या बह गए पानी के अंदर, बाकी लोग भी जाने बचाई हैं। रेलवे का हमला वहाँ पहुंच गया था और बाहर की जो एजेंसी थी वो भी लोग आ गए थे और कश्तियां भी चल पड़ी थी, लोगों ने निकाला है तो काफी लोग तो बच गए हैं। अगर वो पूरी ट्रेन का एक डब्बा ही अंदर अगर चला जाता तो, वैसे फौजी तो वैसे भी तैराक होते हैं, वो पानी से निकल भी सकते हैं, आम अगर मुसाफिर ट्रेन होती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता।
जी हाँ, एक और चीज जो हमने देखा और ये शायद आप बता सकेंगे, आपको पता है कि ये फौजी छावनी में जा रहे थे फौजी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जो इत्तला हमारे पास आई हैं कि एक के साथ उनके ख़ानदान वाले भी सफ़र कर रहे थे, तो क्या ये मामूली है, क्या ये मामूल के मुताबिक है?
नहीं, बस फौजी के साथ तो ख़ानदान वाले भी सफ़र करते हैं, हो सकता है, ये बात तो रेलवे इंतजामिया को या उनके एहलकारों को पता होगा, हमारे में ये बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे और खारिया की तरफ जा रहे थे फैसलाबाद की तरफ से, तो ये तो मेरे इल्म में नहीं है, ये तो रेलवे इंतजामिया का या फौजी हुकाम भी बता सकते हैं, लेकिन अमूमन कभी कभी सफ़र भी करते हैं। लेकिन जब स्पेशल ट्रेन चलती है इनकी तो उसमें मुमानियत होती है, इसलिए वही लोग जाते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं या ट्रेनिंग पे जा रहे होते हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को तो शायद मेरा ख्याल इसमें नहीं लेके जा सकते।
अच्छा, हम अनकरीब इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। रऊफ ताहिर साहब, आप हमारे साथ हैं? जी रऊफ ताहिर हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान रेलवेज़ के पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर हैं?
जी मैं हाजिर हूँ जी, आपके
जी,
साथ ही हूं।
जी जी, तो ये बताइए कि किस सतह की तहकीक हो रही है इस रेलवे के वाक़े पर और कब तक इसकी जो है फाइंडिंग्स मालूम हो जाएंगी पब्लिक?
अभी देखिए, अभी तो इस वक्त तो पूरा जोर जो है ना वो रेस्क्यू पे है और रिलीज पे है कि कई फुट गहरी नहर थी जो पूरे उस पर चल रही थी, उसे बंद किया गया, उसके बाद वो दफ्तर का पानी नीचे उतरा है, रेस्क्यू और रिलीफ किया, वो हमारा पहला हदफ है। लेकिन उसके साथ ही वजीर रेलवे ने ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के 4 आला अफसरान पे मुश्तमिल जो है वो एक तहकीकती कमेटी मुकर्रर कर दी है, उसके उसका नोटिफिकेशन जारी होने को है, जिसमें उसके TOR भी तय पा जाएंगे और उसके लिए मुद्दत का तयन भी हो जाएगा। मेरी इतला के मुताबिक फौजी इदारा जो है वो भी अपने तौर पर इसकी तफ्तीश कर रहा है, तहकीक कर रहा है, और ये भी मुमकिन है कि मुश्तरका तफ्तीश और तहकीक भी हो दोनों इदारों की तरफ से।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मंजूर जी, थैंक यू। और मंजूर रजी, क्योंकि हम इस सेगमेंट को अनकरीब ख़त्म कर रहे हैं, रेलवे के बारे में उमूमी तौर पे बताइए। मंजूर रजी
जी, तो जनाब रेलवे काफ़ी बेहतर हो रही है। हमारे वजीर रेलवे साद रफीक बलोर साहब ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था, ये काफ़ी बेहतर है। रेलवे की अब अर्निंग भी बढ़ गई है और रेलवे की गाड़ियाँ वक्त पे आ रही हैं, वक्त पे जा रही हैं। किसी गाड़ी में अभी ईद का सीजन आ गया है, कराची से किसी भी ट्रेन में कोई जगह नहीं है फ्रॉम 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक। इसी तरह वहां से डाउन में भी हमारे पेशावर या लाहौर से कोई जगह नहीं है, लोगों का एतमाद बढ़ गया है। इस मौके पे, ईद के मौके पे साद रफीक साहब ने 23 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है, जो मुल्क भर में कराची से पेशावर, लाहौर, पिंडी, शक्कर जाएंगे, और 11 तारीख से डेली एक ट्रेन कराची टू लाहौर और लाहौर टू पिंडी और कराची टू लाहौर टू कराची आएगी। तो रेलवे अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही है और हमारा खसारा भी कम हो गया है और रेलवे का अर्निंग भी बढ़ गई है। रेलवे को बेहतरी करने में जहाँ रेलवे वजीर का हाथ है, वहाँ हमारे जनरल मेजर का, DSS का, रेलवे मुलाजमिन का भी बड़ा हाथ है, जो दिन रात मेहनत करके रेलवे को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं।
अच्छा जी, हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये हादसा था या तखरीब कारी थी, और उसके बाद हम आपसे दोबारा रुजू करेंगे। हमारे साथ थे पाकिस्तान रेलवे वर्कर्स फेडरेशन के मंजूर रजी। इससे पहले आपने सुना पाकिस्तान रेलवेज़ के पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर रऊफ ताहिर को। और हमारे साथ थे ब्रिगेडियर सैद नज़ीर इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के, जो अगले सेगमेंट में भी हमारे साथ शरीक होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेते हैं।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद कशीदगी हो गई है, और ये एक ऐसे वक्त में हुई है जबकि ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। आज की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर को तलब कर लिया गया है। हम पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद को भी लेंगे इस मौजू पर। वहाँ से हमारे साथ होंगे आसिफ नंग, जो कि गवर्नर हैं फरा प्रोविंस के। लेकिन क्योंकि हमारे दो मेहमान इस वक्त लाइन पर हैं, लिहाजा अफ़गानिस्तान के हवाले से उनसे भी सवाल करते हैं। हमारे साथ पिछले सेगमेंट से हैं ब्रिगेडियर सैद नज़ीर। ब्रिगेडियर सैद, आप बताइए, आपने देखा कि जो सूरत हाल थी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की, वो हर एक की नज़र में बेहतर हो रही थी। अब ये जो बॉर्डर का क्लैश हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी ब्रिगेडियर सैद नज़ीर जी, जो ही ब्रिगेडियर सैद हमारे साथ आते हैं तो हम उनसे और हमारे मेहमान मोहम्मद रियाज से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आइए इसी हवाले से और इसी मौजू पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं। ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक।
सरहद पर फायरिंग के वाक़े पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अफगान सरहद की जानिब से पाकिस्तानी एहलकारों पर फायरिंग की गई, पाकिस्तान का दावा। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
statement regarding the firing incident, and I would like to just briefly recapitulate what has been said. An RPG-7 rocket and few rounds of small arms were fired on Angur Adda gate from Afghan side, due to which two Pakistani security personnel were injured. Pakistani troops responded and targeted positions from where the fire was coming. I know there have been many reports in news in the media regarding this incident, but this is what it is I have shared with you. Regarding the remarks attributed to the Afghan president, well, we have seen the media reports in this regard. However, according to our information, remarks attributed to the Afghan president are factually incorrect. A peaceful, stable, and prosperous Afghanistan is in Pakistan's best interest. Non-interference in internal affairs of Afghanistan is the key pillar of our Afghan policy. During the Prime Minister's visit to Kabul on 12 May 2015, the two leaders agreed to strictly adhere to the policy of non-interference and not allow our respective territories to be used against each other. The two leaders also share a mutual conviction to overcome the past and build a forward-looking relationship based on trust and understanding, and are constructively engaged to rebuild mutual trust and understanding for a cooperative relationship.
जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इस बात का अफसोस का इजहार किया है कि उनके सफ़ीर को अफ़गानिस्तान ने तलब कर दिया है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है. इस सिलसिले में हमारे साथ फरा प्रोविंस के गवर्नर आसिफ नंग हैं. और आसिफ नंग साहब, आपको खुश आमदेद.
जी सलाम पेश करता हूँ आपको और सारे सामीन को.
शुक्रिया. आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक खुशी का एहसास था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, लेकिन ये जो नाखुशगवार वाकया हुआ है, इसकी वजह से पाकिस्तान में भी अफसोस पाया जाता है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के सफ़ीर को तलब कर दिया है. आप बताइए कि ये टेंशन की वजह क्या समझते हैं.
देखें, बुनियादी वजूहत तो बहुत है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जहाँ तक एक लंबा कशाले की बात है, वो पिछले कुछ 40 साल से अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन का लड़ाई और यहाँ पे सोवियत यूनियन का लड़ाई शुरू हुआ, अफगान जहाज और जहाँ हिमायत की अफगान जहाज की हिमायत की बात था, और दूसरा लाइन हमारी जो रेड लाइन पाकिस्तान था उस लड़ाई में, तो ये ताल्लुकात वहाँ से बन गया. लेकिन काली बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि ये बन गया. एक ग्रुप था वहाँ पे, फरीक था और पार्टी था, जो जहाजी पार्टी थे उनके साथ ताल्लुकात था पाकिस्तान का. और ये ताल्लुकात इसका बुनियाद ये है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनकी ताल्लुकात नहीं था, तो इस बुनियाद पर कोई ताल्लुकात भी अगर मबनी है या उस पर सेट हुआ तो वो एक पार्टी के साथ था, और पॉलिटिकल पार्टी था या वॉर पार्टी था, जो भी नाम हम रखे, वहाँ से इसकी बुनियाद खराब रखा हुआ. और अभी जहाँ तक बॉर्डर की मसाइल है, वहाँ पे कोई क्लियर लाइन नहीं है, कोई क्लियर एरिया नहीं है, इसमें जाते कभी कभी आते हैं. और दूसरा बात यह है कि अभी यहाँ की और वहाँ की जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है दहशतगर्द, वहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है. हम समझते हैं कि ये हमारी मफादत में, पाकिस्तान समझते हैं कि शायद ये हमारी मफादत में होगा. इस तरह इसका बुनियादी हल के लिए समझौते के नहीं बल्कि एक एक्शन की जरूरत है. समझौते जो है वो कागज पे होते हैं, लेकिन एक्शन जो है वो एक प्लान में होता है और उसका रिजल्ट सामने आता है।
अच्छा,
तो आपका उस पर हमारी ताल्लुकात नहीं है।
अच्छा जी, नंग साहब आप हमारे साथ रहें, हमारे साथ पाकिस्तान के अफगानिस्तान में साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह महमद हैं, और महमद साहब आपको खुश आमदे जी। रुस्तम शाह महमद
जी,
महमद साहब हमारे साथ आसिफ नंग हैं जो कि फरा की सूबे के गवर्नर हैं, और बुनियादी तौर पे वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान एतमाद दोबारा से टूट गया है। आप क्या समझते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत पर प्रेशर है या फिर पाकिस्तान ख़ुद अपना दयानतदार किरदार अदा नहीं कर रहा?
देखिए, असल में बात ग्राउंड रियलिटीज की है। जब तक वहाँ पे जंग जारी रहेगी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का जो पोटेंशियल है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, ट्रेड, कमर्शियल, ये हासिल हो सकेगा। क्योंकि उस जंग के नतीजे में बहुत सी बदगुमानियाँ पैदा हो जाती हैं, बहुत सी सस्पेशन पैदा हो जाते हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरे जाते हैं, पाकिस्तान उन पे इल्ज़ाम धरता है, और ये सिलसिला जारी रहता है। इसलिए असल बात अशरफ गनी और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नहीं है। हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात, इस सारे ओवरऑल जो ताल्लुकात हैं उसका एक थोड़ा छोटा सा फ्रैक्शन है। असल ताल्लुकात तो उस वक्त होंगे जब अफगानिस्तान में अमन आएगा, गैस पाइपलाइन और ताजिकिस्तान से बिजली वगैरह, ये बड़े बड़े मनसूबे जो है वो कमीशन होंगे, तजारत बढ़ेगी सेंट्रल एशिया के रास्ते, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पाकिस्तान के रास्ते तजारत शुरू हो जाएगी। ये असल बात है कि उस जो रूट काज है उसको एड्रेस किया जाए, और वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जब तक वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा, ये ओकेजनल उसमें कुछ आप रेट्रक वगैरह से तो काम ले सकते हैं, लेकिन जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर होंगे। इसलिए एतराजात और नुक्ताचीनी वगैरह ये होती रहेगी, और यही इस वक्त भी हो रहा है कि पिछले 3-4 महीने पहले कुछ ताल्लुकात में बहुत कुछ गर्म जोशी देखने में आई थी, लेकिन हमें मालूम था कि ये ज्यादा देर रहने वाली बात नहीं है, इसलिए कि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बदस्तूर है, बल्कि उसमें की शिद्दत में इजाफा हो रहा है।
अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, हमारे साथ गैर जानिबदार तज्जियाकार मोहम्मद रियाज लाइन पर हैं। मोहम्मद रियाज, आपको भी खुश आमदीद। ये बताइए कि आपने सुना पाकिस्तान अफगानिस्तान का नुक्ता नज़र, आप क्या समझते हैं? खैर, आप भी जानते हैं कि ये ताल्लुकात वक्तन फवक्तन ख़राब होते हैं, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत ने ख़ास कोशिश की थी कि ये ताल्लुकात बेहतर हों। अब इस वक्त आपके ख्याल में जिसे कहते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ हैं, कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से हालात दोबारा कशीदा हो गए? जी मोहम्मद रियाज
जी,
तो कशीदगी की वजह हम आपसे पूछ रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और बिल्कुल जो ताज़ा वाकया हुआ है बॉर्डर का, इसके हवाले से बताइए।
देखिए, बुनियादी चीज जो है वो ये है कि ये तो अरसा दराज से जो है ये चीज़ें जारी हैं, ये कोई नया वाकया नहीं है। पिछले दिनों जो है वो काबुल के अंदर एक धमाका हुआ, इसी तरीके से खुद जो अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जो दो सूबे हैं पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ और अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर ये जो वारदातें हैं ये मामूल का हिस्सा रही हैं, क्योंकि जो लोग करीब तरीन इलाके जो हैं वो अफगानिस्तान की सरहद और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो हैं, यहाँ पर जो है वो जो तीसरा फरीक है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ वहाँ पर एक्शन ले रहा है और वो नई पनागाहों की सूरत में वहाँ भाग के जा रहा है, इसी तरीके से कहा जाता है कि वहाँ जो जिन लोगों के खिलाफ एक्शन होता है वो भाग के इधर आते हैं। बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि जब तक जो है दोनों फरीक जो हैं, दोनों हुकूमतें जो हैं, वो इस बात का तहिया नहीं करेंगी कि अपने अपने इलाके से दोनों ने जो है कॉन्फ्लिक्ट का जो बुनियाद है उसको ख़त्म करना है, उस वक्त तक जो है ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी। खुद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन इस किस्म के छोटे मोटे जो है सरहद के ऊपर वारदातें होती रहती हैं,
तो वह दफ्तर खारजा दोनों साइड का जो है इल्जाम दर इल्जाम लगाता रहता है।
अच्छा जी जी जी, मोहम्मद रियाज आप हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हमारे साथ फरा सूबे के गवर्नर आसिफ नंग हैं, उनसे यही सवाल करते हैं। आसिफ नंग साहब, आप बताइए कि जब से ज़रब अज़ब शुरू हुआ है पाकिस्तान में, आप लोग उससे मुतमईन हैं, और क्या हकानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए जाते थे अफ़गानिस्तान से, क्या इनको दोबारा आप लोग दोहरा रहे हैं कि आपके ख्याल में दोबारा से पाकिस्तान ने हकानीज को जगह देना शुरू कर दिया है?
दरअसल में कोई चेंज नहीं आया, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हुआ, यहाँ पे तालिबान की ऑपरेशन भी शुरू हुआ, एक साथ शुरू हुआ, वहाँ से तालिबान को भगा दिया, यहाँ अफगानिस्तान आया, और वहाँ की जो हम कहते हैं कि अकाली शबके के या नेटवर्क की एक एक्टिविटीज है, वो वहाँ पे अभी कोई उनकी खिलाफ एक्शन नहीं उठाया। इस तरह कुवैत में शोरा कुवैत कहते हैं तालिबान की, सब लीडर्स वहाँ है, या उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं उठाया। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, वजीरिस्तान में शुरू होता है, पाजौर में शुरू होता है, फिर यहाँ से बाकी लोग यूँ कर जाते चलते सूबे बलूचिस्तान कुवैत में आते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू होते हैं, तो फिर आते दूसरी बॉर्डर की वजीरिस्तान मसूद और वाना वजीरिस्तान ही तीरिया में आता है, मीर अली में आता है। ये मेरे असल में गेम जैसा लगता है, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, कितना मरा इस ऑपरेशन में, कहाँ है, कितना पकड़ा गया, कितने को अभी जेल में भेज दिया, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। कोई मीडिया ने भी क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इंटरनेशनल मीडिया ने भी कोई तस्दीक नहीं किया। मैं समझ रहा हूँ कि ये बात है कि ये एक गेम है, मैं इसको अब सब बॉर्डर के रहने वाला लोग बहुत ये पश्तून जो है ये सब जानते
हैं। जी जी
जी, जहाँ पे जहाँ तक एक मजबूत डिप्लोमेसी की बात है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ 30 बरस में अब कायम नहीं हुआ। जहाँ तक इकोनॉमिकल बेस रिलेशन या कोऑपरेशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, ये कायम नहीं हुआ। और जहाँ तक कल्चर रिलेशन की बात है, दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत मुश्तरकात है, तो वो भी कायम नहीं हुआ। ये असल में एक तीन बुनियादी आधार है, उस पर अगर हमारी डिप्लोमेसी न बन जाए तो डिप्लोमेसी में तरफ कलामियाँ जो आते हैं, मेरे ख्याल में ये नॉर्मल है, अब इसका कोई असर रसूख भी नहीं है। और जहाँ तक हकानी वगैरह जितना भी यहाँ पे नेटवर्क है, इंसर्जेंसी है, उसका बाकायदा हिमाया हो रहा है, और ये महसूस भी है, और कोई नहीं है।
अच्छा जी, आप दो मिनट और रहें हमारे साथ। हमारे साथ ब्रिगेडियर सैद नज़ीर हैं, जो कि दिफाई तज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर सैद, आप हमारे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है?
जी जी।
तो हमारे साथ कई गेस्ट हैं इसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि फरा सूबे के गवर्नर आसिफ नंग हैं, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद हैं, और तज़ियाकार मोहम्मद रियाज हैं। आपको हम सुनना चाहते हैं कि ये जो ताज़ा वाक़या हुआ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच, आपके ख्याल में ये देर पा रहेगा जो ताल्लुकात को बिगाड़ने में, या फिर सिफारतकारी जो है वो आखिरकार कार जीत जाएगी?
मेरे ख्याल में तो सबसे पहले जो आम बात थी, दोनों मुल्कों के दरमियान जो फौजी सतह पर भी और सियासी और डिप्लोमेटिक सतह पर होना चाहिए था, वो ये था कि हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किसी एक हादसे के, किसी एक अटैक के, या कहीं पर कोई इस तरह वाक़ होता है तो उसका यरगमाल नहीं बनने देंगे। ये तो बड़ा ज़रूरी था कि पहले ये नुक्ता इन दोनों के दरमियान फैसला आ जाता। दूसरी बात ये थी कि इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं और ये होते भी रहेंगे, इसलिए कि दोनों तरफ पर मुकम्मल तौर पर दोनों हुकूमतों का कंट्रोल नहीं है, और जब वो कंट्रोल नहीं है तो इस किस्म के जो गेम्स पायलर होते हैं, जो नहीं चाहते कि ये ताल्लुकात बहाल हो, اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رکھنا یا کوئی نہ کوئی بد اعتمادی پیدا کرے تو ان کو یہ موقع ملتا رہے گا. اگر ان کے اس موقع پر ہم سفیروں کو طلب کرتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف وہ تلخ بیانات دیتے رہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے جو کہ نہیں چاہتے کہ تعلقات بحال ہو. اور تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلقات کے اچھے ہونے میں, دونوں طرف کے امن ہونے میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہے اور افغانستان کا کتنا فائدہ ہے, اور نہ ہونے میں دونوں کا کتنا نقصان ہے. تو پھر کون چاہے گا کہ ان تعلقات کو حکومتی سطح پر یا فوجی سطح پر یا بارڈر پر جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ ان کو خراب کرنا چاہیں گے. ضروری ہے کہ ان میں ایسے ایلیمنٹ ابھی تک موجود ہے جو کہ جنگ سے ان کی پرورش ہو رہی ہے, جنگ سے ان کی اکانومی ہے, جنگ سے ان کی لارڈشپ قائم ہے اور جنگ سے ان کی سیاست چل رہی ہے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا ساتھ ہے یا ان لوگوں کی شرارت ہے جو کہ اس قسم کے تعلقات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ خیر ہے یہ ہو گیا یہ واقعہ, لیکن ابھی مزید میرے خیال میں کہ اس بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر پاکستان کے مطلب کے لیڈروں کو اگر 10 دفعہ بھی افغانستان جانا پڑے اور ان کو بھی آنا پڑے تو پھر بھی پاکستان کے لیے یہ امن افغانستان کے ساتھ قائم کرنا اس موقع پر نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ انڈیا نے بڑا صاف کہا ہے کہ ہم افغانستان کے رستے سے اور ان لوگوں کے رستے سے پاکستان کے کمزور پہلو کو جو کہ اس کا اندرونی پہلو ہے اس کو سبوتاج کرنے کی, اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی اور ان کو غیر استحکام دینے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں اب تو یہ اوپن بات ہے, اب پاکستان کو یہ سائڈ خواہ جو بھی ان کو کرنا پڑے اور جس حد تک بھی جانا پڑے اس کو ہر حال میں بند کرنا ہوگا, افغانستان کو ساتھ ملانا ہوگا. تو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اس کو اسکلیٹ کرے. اور میرے خیال میں کہ افغانستان کے حکومت کو بھی خصوصی طور پر جو اشرف غنی ہے اس سے بہت زیادہ توقعات متعلق وابستہ ہیں, تو وہ ان لوگوں کے وہ انڈر پریشر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نادن علی عبداللہ عبداللہ سے اور باقی لوگوں سے وہ انڈر پریشر ہے, اور سیکیورٹی بھی جو فورسز ہیں ان میں بھی ایسی ایلیمنٹ ہے. ظاہر ہے کہ ان میں زیادہ تر نان پشتون ہیں, زیادہ تک ایسے ڈیموکریٹک کمپلیکشن نہیں ہے جو کہ مطلب ہے کہ پر پھر افغانستان میں پرسپشن جو ہے وہ ریئلٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہے, تو وہ پرسپشن ریموو کرنے میں ٹائم لگے گا.
بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ہے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر, ان کے ساتھ تھے گورنر فرا پروونس افغانستان کے آصف ننگ, ان کے علاوہ تھے رستم شاہ محمد جو کہ پاکستان کے افغانستان میں سفیر رہ چکے ہیں. محمد ریاض آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ ہفتے کو یعنی سنیچر کو یہاں 4 جولائی کی تہوار ہوگا, اور اس سلسلے میں امریکہ میں سیکیورٹی کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں کچھ زیادہ ایک طرح کا خوف ہے کہ اس دن کوئی حملہ ہو سکتا ہے یا اس کے ارد گرد کوئی حملے ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ سے مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق ہیں, جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں محمد ریاض. تو پروفیسر فیضان آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ, تمام سننے والوں کو بہت سلام دعا پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھیں.
شکریہ. اور آپ بتائیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج جمعرات کا روز ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں نیوی یارڈ میں, یعنی واشنگٹن ڈی سی کے نیوی یارڈ میں بھی ذرا سی ایک کھلبلی سی مچ گئی, کیونکہ توقع ہو رہی تھی کہ شاید وہاں کوئی حملہ ہوا ہے, کسی نے کوئی گولی ماری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں کس حد تک ایک خوف پایا جاتا ہے کہ 9/11 کے بعد اس طرح کے واقعات اندرون خانہ ہو سکتے ہیں.
جی, اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی, ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے. امریکہ میں اس وقت جو, جس کا پاکستان کا 14 اگست ہے, اسی طرح امریکہ کا جو ہے وہ 4 جولائی ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی آزادی انگریزوں سے حاصل کی اور ہم نے بھی.
جی جی.
تو اور اس کے ساتھ جس طرح ہم نے انہیریٹ کی ہیں پرابلم کالونیلزم کی, انہوں نے بھی کی ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی بات جو انہیریٹ کی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ آفٹر برٹش ورلڈ جو ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا جو اپہیول ہے اور جو مختلف ممالک میں ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 جو تھا وہ ایک ایسی چیز تھی جس نے پوری ڈیفینیشنز جو ہیں ریلیشن شپس کی چینج کر دی ہیں انٹرنیشنلی. تو یہ اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیرس میں اور اس کے بعد یہاں کے علاقوں میں کچھ جگہ کچھ لوگوں نے ایسے انتظامات کیے آرٹ گیلریز وغیرہ میں جو کہ مسلمانوں کے لیے جو تھے تکلیف کا باعث تھے, جس کی وجہ سے موقع ملا ہے ان آئیسس اور اس قسم کے گروپس کو جو کہ آؤٹسکرٹس میں ہیں, کہ ان کا یہ, ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ تھریٹ کر سکیں اور انسپائر کر سکیں کچھ لوگوں کو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے اور ان کے جو ابھی یہ ان کے جو وارننگز آئی ہیں ایسے گروپس کی طرف سے, دہشت گرد گروپس کی طرف سے, تو اس کی وجہ سے امریکہ میں بہت زیادہ کیئرفل ہیں, بہت کیئرفل ہیں اور وہ بہت کوشس ہیں, سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی ہے اور سیکیورٹی الرٹ ہائی ہے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں تھی کہ کچھ اور بھی صرف مسلم دہشت گرد گروپ نہیں بلکہ جو دوسرے جن کو کہتے ہیں کہ جو فرنج پر ہوتے ہیں, جو بالکل کسی کارنر پہ ہیں, اور وہ گروپ جو ہیں وہ بھی اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے نام پیدا کرنے کے لیے آج کل ایسا ہے انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, کہ ایک یا دو شخص مل کے ایک ایسا ہپلا بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ جو ہیں اس کی عزت میں آ سکتے ہیں. اور پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر بہت سے لوگ اس بات سے سفر کر چکے ہیں. جب بھی 10 محرم ہوتا ہے, 14 اگست ہوتی ہے, یا ایسا کوئی تہوار ہوتا ہے, تو پورا پاکستان جو ہے اس کو الرٹ پہ جانا پڑتا ہے.
بالکل. محمد ریاض, آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں بھی ہم نے سنا ہے کہ IS یعنی اسلامک اسٹیٹ ایکٹیو ہو گیا ہے, کس حد تک وہاں آپ کے خیال میں IS کے حملوں سے عام لوگوں کو خطرہ ہے؟
دیکھیے, بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ ایک تھاٹ ہے, یہ ایک فکر ہے جو کبھی طالبان کی صورت میں, کبھی القاعدہ کی صورت میں, اور کبھی اسلامک اسٹیٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں, یہ جہاں ایک طرف تو جو ہے کہ ان کا اپنا ایک ریٹرن ویو ہوا ہے ورلڈ کے بارے میں اور لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں, یہ ان کا ایک اپنا ایک ویو ہے, ایک چیز وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ایک رد عمل بھی ہے کہ وہ یہ تمام لوگ جو ہیں جن کے روٹس جو ہیں وہ لیبیا, عراق, ایجپٹ, لبنان, سیریا, یہاں تک ایون پھیلے ہوئے ہیں. تو ایک یہ رد عمل ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن نمبر 1 ہے. دوسری چیز پھر یہ ہے کہ یہ جو سیکٹیرین ٹائڈ ہے اور جو اس کا مڈل ایسٹ کے اوپر خصوص ایک امپیکٹ ہے, یہ جو چھوٹی ہماری شیخرم ہے ان میں آپ دیکھیں, سعودی عرب میں فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر دھماکہ ہوا, پھر کویت میں ہوا, اور اس سے پہلے جو ہے یمن کے اندر کی صورتحال سے آپ واقف ہیں, پھر ایران اور جو ہے امریکہ اس کے مابین جو ہے کشیدگی ہے. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل ملا کے جو ہے ایک تھریٹ کریٹ کرتی ہیں امریکہ کے لیے. اور اس میں کسی ایک اسپیسیفک گروپ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کرے گا, हो सकता है कि कोई वारदात करने के बाद उसको जिम्मेदारी कबूल कर ले। तो ये जो लॉलेसनेस का किसी भी जगह पर कोई वाकया कभी भी हो सकता है
जी,
इसके लिए कोई बड़ी जमानत की जरूरत नहीं। खुद अमरीका के अंदर के स्कूलों में फायरिंग हुई और वो जो है बच्चों को मार दिया गया, तो अब ये तो यानी वो अचानक हुए। इसी तरीके से जिस थ्रेट की उनके पास कोई इंटेलिजेंस है इस वक्त अमरीकी इंतजामिया के पास, तो लाजमी बात है वो उसके हिसाब से जो है सिक्योरिटी भी कर रहे होंगे।
बिल्कुल।
लेकिन ये चीजें जो हैं ये किसी एक दिन के साथ वाबस्ता नहीं होती, ये तो जिंदगी के मामूलात में शामिल हो गई हैं। अब जो लोग अपने मरने पे फख्र करते हों तो दूसरे को मारने में क्यों नहीं फख्र करेंगे।
जी। जी जी मोहम्मद रियाज, आप और प्रोफेसर फैज़ान हमारे साथ दो तीन मिनट रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान आपस में कोशिश कर रहे हैं कि सफारतकारी को बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में अमेरिका ने भी पाकिस्तान से एक डेलीगेशन को मदु किया है, ये कहलाते हैं स्पेशल चिल्ड्रन, और उनको यहाँ ओलंपिक्स में शिरकत के लिए ख़ास तौर पे दावत दी गई है। हम चाहते हैं कि इसकी आपको एक वीडियो रिपोर्ट सुनाएं, और उसके बाद दो तीन मिनट हैं तो हम बात करेंगे। ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक।
अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में रवां साल जुलाई में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जो जहनी तौर पर माजूर अफराद की महारतों और कारनामों को उजागर करने के लिए दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मुकाबला है। इन मुकाबलों में पाकिस्तान से भी 85 रुकनी दस्ता शिरकत करेगा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने ने स्पेशल ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, कोचेज़ और इमदादी अमले के लिए एक तारुफी तकरीब का इनेकाद किया, जो माजूर अफराद के हकूक के फरोग के लिए कोशां अमरीकी महकमा खारजा के इंक्लूजन डिप्लोमेसी आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है।
स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में अमेरिका में जा रही हूँ, वहाँ पे अमेरिका में बहुत ही पाकिस्तान और अमेरिका में बहुत डिफरेंस होती है, बहुत ही अच्छा होगा। जो चीज़ें जो बताइए वर्ल्ड गेम में मैं रोशन करूँगी, गोल्ड मेडल लेके आऊँगी इंशाल्लाह। स्पेशल ओलंपिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अमेरिका जिंदाबाद।
इस मौके पर अमरीकी सफारतखाने की एक अहदेदार एंजेला एगलर ने कहा कि खेल मौसीकी की तरह लोगों को एक दूसरे के करीब लेकर आता है।
ये लोग सच में बहुत स्पेशल हैं। ये गैर मामूली लड़के लड़कियां अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये अपने मुल्क के सच्चे सफीर हैं। ये लोग लॉस एंजलिस आने वाले 7,000 खिलाड़ियों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा खेलेंगे।
देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स का मेन जो है मकसद वो है पार्टिसिपेशन। इसमें एवरी एथलीट इज़ अ विनर, नो वन इज़ अ लूजर, तो एवरी वन इज़ अ विनर। तो लेकिन ये कि एथलीट्स क्योंकि बहुत होपफुल हैं, बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी पास्ट में जो हमारी वर्ल्ड समर गेम्स में पार्टिसिपेशन करते रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 100% हमारा रिजल्ट रहा है, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह लॉस एंजलिस से जब वापस पाकिस्तान टीम आएगी तो हर एथलीट के गले में इंशाल्लाह मेडल होगा।
स्पेशल ओलंपिक्स का ख्याल 1950 की दहाई में उस वक्त परवान चढ़ा जब अमरीका के साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी की हमशीरा यूनस कैनेडी शेरेवर ने जहनी तौर पर माजूर नौजवानों के लिए समर डे कैंप का एहतमाम किया। पहले स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स 1968 में अमरीका के शहर शिकागो में मुनक्किद किए गए थे। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी, तो प्रोफेसर फैज़ान, एक मिनट में बताइए कि अमेरिका के लिए सिफारतकारी कितनी अहम है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना। जी
जी, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना अमेरिका की तरजीह रही है और रहेगी, और इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि कई इकदाम किए जाते हैं, और इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा गर्मजोशी का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि वो जो एक आपको याद होगा कुछ साल पहले पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात खासे सर्द हो गए थे और उसमें एक डिस्ट्रस आ गया था, लेकिन दोबारा हम देखते हैं कि वो चीज़ें बिल्ड हो रही हैं ट्रस्ट की तरफ, और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम कंट्रीज जो हैं उनकी लाइन में उसको समझा जाए और उनके साथ ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे और लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है और मुल्कों के साथ ताल्लुक है। तो ये ऐसे जो एक्सचेंज होता है स्पोर्ट्स टीम्स का या आर्ट्स एग्जीबिशन का या आर्टिस्ट का, ये एक बहुत अच्छा रास्ता और जीना है जिसके जरिए हम एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं।
जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान हक। افسوس کہ محمد ریاض کو ٹائم نہیں دے سکے، لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے انجینئرز تھے جونا کمنگز اور لینس ریمکس، پروڈیوسرز اریشا خان اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.